रात में क्लास चल रहा था, 30/10/1966 दूसरे पेज के मध्यांश में बात चल रही थी कि नई दुनिया की स्थापना करूंगा तो नई दुनिया में रहने वालों की भी तो स्थापना करूंगा ना। तो देखो अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनने के लिए ये राजयोग सीख रहे हो। कौन बच्चे है, क्या है स्पेशलिटी बताइए उन बच्चों की। तुम बच्चे, तुम किसे कहा जाता है? सन्मुख बैठने वालों को तुम कहा जाता है और बाजू में बैठने वाले को यह कहा जाता है और दूर वालों को वो कहा जाता है। तो वह बच्चों के लिए या उन बच्चों के लिए राजधानी नहीं स्थापन होनी है, इन ब्रह्मा के लिए या ब्रह्मा के फॉलोअर्स के लिए भी राजधानी स्थापन नहीं होनी है। तो राजधानी स्थापन होनी है वो तुम बच्चों के लिए स्थापन होनी है और तुम राजयोग प्रैक्टिकल में अभी सीख भी रहे हो। ये राजयोग राजाई दिलाने वाला योग दुनिया में और कोई मनुष्य मात्र सिखाई नहीं सकता। कोई देवात्मा भी नहीं सिखा सकती, क्योंकि देवात्माएं तो स्वयं ही उस आत्माओं के बाप से लेने वाली है राजाई, वो देने वाली नहीं है। और ये तुम जानते हो, ये जो पुरानी दुनिया है इस महावारी महाभारत वार से अभी सामने खड़ी है, अभी ये लड़ाई लगने वाली है। उससे ये भारत में बड़ा विनाश होगा, क्योंकि भारत में ही राजधानी स्थापन होनी है। पहले तुम्हारी राजधानी स्थापन होगी फिर विनाश होगा, समझा? कैसे विनाश होगा? कलप पहले के मिसल, ये ड्रामा के प्लान के अनुसार, क्योंकि ये ड्रामा तो बना बनाया है ना, बाप ने जो समझाया, ये ड्रामा का चक्कर है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। इसमें जो कुछ भी होता है और इस चक्कर के बारे में तुमने जो कुछ भी जाना है कि भाई सतयुग में ये देवताओं का राज्य था, ये कहकर किस तरह इशारा किया, बाबा के बाजू में लक्ष्मी नारायण का चित्र होता था, तो ये लक्ष्मी नारायण देवताओं का राज्य था सतयुग में। उनको 5000 वर्ष हुआ, जब इन देवताओं का राज्य था, 16 कला संपूर्ण का, तो जरूर उस राज्य से पहले लड़ाई भी लगी होगी, क्योंकि जितनी भी राजा यहाँ स्थापन होती हैं, पहले लड़ाई, फिर जीतने के बाद राजाई शुरू होती है। तो 5000 वर्ष पहले नारायण का राज्य था और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि महाभारत युद्ध 5000 वर्ष पहले हुआ था, परंतु गलती सिर्फ ये कर दी है कि महाभारत युद्ध को उन शास्त्रकारों ने द्वापर के अंत में दिखाई दिया है। अब सोचने की बात है कि द्वापर के अंत में अगर भगवान ने आकर के महाभारत युद्ध कराया, सत्य और असत्य का युद्ध कराया, तो उसके बाद कलयुग कहां से आ गया? पापी युग। भगवान आवेगा तो क्या पापी युग की स्थापना करावेगा? जैसे और धर्म पिताएं आते हैं तो उनके बाद ये दुनिया पाप की ओर बढ़ती जाती है। घोर कलयुग झूठ खंड की ओर बढ़ती जाती है। अरे भगवान तो सत्य को कहा जाता है, सत्य चित्तानंद कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। वो सत्य की स्थापना करेगा तो जरूर सतयुग ही स्थापन होगा ना। कलह कलेश का कलयुग कैसे स्थापन हो जाएगा? तो देखो, सतयुग के आदि को 5000 वर्ष हुआ है और 5000 वर्ष पहले कलयुग का अंत और सतयुग का आदि हुआ था। ऐसे नहीं द्वापर के अंत में कोई भगवान ने युद्ध कराया सत्य असत्य का और पापी कलयुग स्थापन किया। हाँ, भगवान आते हैं, शैतान और शैतानों से युद्ध कराते हैं, तो आधा कल्प के लिए, पूरे दो युगों के लिए, सतयुग और त्रेता में हे कृष्ण नारायण 16 कला संपूर्ण और 14 कला राम का राज्य चलता है। बस ये दैवीय राज्य उन्होंने राज्य किया था। अब ये बात तो अच्छी तरह से बुद्धि में बैठ गई ना कि सतयुग त्रेता का जो राम राज्य कहा जाता है वो कौन से रावण से युद्ध हुआ था? रावण रुलाने वाले को कहा जाता है रावयते लोकान्निति रावण, जो दुनिया वालों को रुलाता है, सारी दुनिया को रुलाता है, दुख दर्द की दुनिया बनाता है, उसे रावण कहा जाता है। रावण को 10 शीशों का संगठन दिखाया जाता है। आज कलयुग के अंत में मुख्य 10 धर्म ही फैले हुए हैं सारे संसार में। उन दस धर्मों के दस प्रणेता धर्म पिता हैं, वो इस दुनिया को नरक बनाते हैं। हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई के आने के बाद ये दुनिया नरक ही बनती गई है। तो एक ही परम पिता परमात्मा भगवान शिव है, जो इस सृष्टि पर कलयुग के अंत में आकर के सत्ययुग की स्थापना करते हैं। उस समय लक्ष्मी नारायण और सीताराम की डायनेस्टी ने राज्य किया। आधा कल्प, पूरे आधा कल्प भगवान का स्थापन किया हुआ राज्य चलता है। फिर आधा कल्प शैतान का राज्य चलता है। ज्ञानियों के हैं, शैतानों के संगठन का राज्य चलता है। इसलिए रावण को दस सिर दिखाए जाते हैं और राम को एक सिर दिखाया जाता है। सिर में ही बुद्धि होती है। बुद्धि कहो, अकल कहो, मत कहो, वो एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान की ही मत है। और इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र की मत बुद्धि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। परंतु विद्वान आचार्यों ने वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ का टाइटल अपने ऊपर रख लिया। श्री श्री 108 स्वामी सतानंद जी महाराज वगैरह वगैरह। अब देखो कहां भगवान और कहां मूत से पैदा होने वाला मनुष्य। अरे भगवान तो मूत की पैदाइश भी नहीं कराते, ये तो भ्रष्ट इंद्रियों की चीज है। भगवान तो आते हैं, श्रेष्ठ इंद्रियों का आचरण कराते हैं, जिन देवताओं को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। श्रेष्ठाचारी देवताओं का निर्माण जरूर उनसे भी श्रेष्ठ कोई होगा, वो ही कर सकता है। इसलिए कहा जाता है डबल श्री, श्री श्री 108। ये एक ही शिव का टाइटल है, जो कभी भी इस दुनिया में आकर के नई दुनिया की स्थापना तो करता है, पुरानी दुनिया और पुराने धर्मों का विनाश तो करता है, लेकिन भ्रष्ट बुद्धि नहीं बनती। कैसी भ्रष्ट बुद्धि? हिंसा का राज्य करना नहीं सिखाता है। और जितने भी धर्म पिताएं आए, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कोई भी हो, सबने हिंसा की है, हिंसा का युद्ध कराया है, हिंसक बने हैं और हिंसा का राज्य चला है। आज भी दुनिया के हर देश में जो भी प्रजातंत्र राज्य चल रहा है, वो पुलिस, मिलिट्री और एटमिक एनर्जी की हिंसा का राज्य चल रहा है। भगवान तो आकर के अहिंसा का राज्य स्थापन करते हैं, अहिंसक युद्ध कराते हैं, जो विद्वान आचार्यों ने महाभारत युद्ध, रामायण युद्ध और देवताओं का आसुरों का युद्ध हिंसक दिखाई दिया है, वो वास्तव में बात जब भगवान आते हैं कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, पुरुषोत्तम संगम युग में आते हैं, उस समय की बात है। देह अभिमानी मनुष्यों ने देह अभिमान की बातें दिखाई दी है। भगवान तो आत्माओं का बाप है, देह के धर्मों की स्थापना नहीं करता। गीता ज्ञान से आत्मिक धर्म की स्थापना करता है। आत्मा ही स्व है और शरीर पांच तत्वों का पुतला पर है। आज हर धर्म का मनुष्य मात्र अपने को देह का पुतला समझता है। वास्तव में देह तो विनाशी है, हम तो अविनाशी ज्योति बिंदु आत्मा है। जो ज्योति बिंदु आत्मा प्रकृति के मध्य में टिकी हुई है, इसलिए पुरुष लोग यादगार में टीका लगाते हैं और माताएं आज भी भारत में आत्मा की यादगार प्रकृति के मध्य में बिंदी लगाती हैं। इन बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप बिंदु ही होगा। अणोणीयांशम गीता में गाया हुआ है, तो बाप भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु और बच्चे भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, फिर फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। सारी आत्माएं, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, कीट पशु पक्षी पतंगे ही क्यों न हो, सब आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं। इसलिए दुनिया की आबादी लगातार बढ़ती जाती है। कभी कोई मनुष्य मात्र पशु पक्षी कीटाणुओं की आबादी कम नहीं होती, क्योंकि सत्य बाप का धाम सत्य धाम है। बड़े से बड़ा बाप है तो उसका धाम भी परम धाम है। बाप का घर जहां होगा वहां बच्चों का भी घर होगा। वो परम धाम वासी ज्योति बिंदु शिव जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों का जानने वाला है। मनुष्य मात्र तो जन्म मरण के चक्र में आने के कारण सब पूर्व जन्म की बातें भूल जाते। तो जो आत्मा रूपी एक्टर्स अपने अनेक जन्मों को भूले हुए हैं, उन आत्मा रूपी एक्टर्स को परमपिता परमात्मा शिव ही आकर के भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान देता है। सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक के 84 के चक्र का ज्ञान देता है और वो ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान होता है। उसके लिए ये राजयोग है जिसमें राजाई पाने का तंत्र भरा हुआ है। ये राजयोग सिर्फ भगवान ही गीता ज्ञान के द्वारा देते हैं, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, जबकि गीता में ढेरों श्लोक ऐसे आए हैं जिनसे भगवान निराकार अभोक्ता अजन्मा साबित होता है। जो पश्चिमी सभ्यता के बड़े बड़े विद्वान हुए हैं उन्होंने भी अपने अपने शोध ग्रंथों में ये साबित कर दिया था सैकड़ों वर्ष पूर्व कि गीता पहले एक निराकारवादी रचना थी, बाद में उसमें जो कृष्ण के फॉलोअर्स थे उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया, क्योंकि कृष्ण तो लवफुल बच्चा है, वो ला को नहीं जानता, वो सृष्टि का पहला पत्ता है, उस सृष्टि रूपी वृक्ष का जो पहला पत्ता है जरूर उसको जन्म देने वाला कोई तो बीज रूप बाप होगा ना, जो उसे जन्म देने वाला बीज रूप बाप है वो ही निराकार शिव है। ऐसे भी नहीं, वो निराकार सदैव निराकार ही रहता है, नहीं, जैसे हम सब आत्माएं निराकार हैं, जो आंखों से नहीं देखा जाता उसे निराकार कहते हैं, आंखों से नहीं आंखों आत्मा को देखा जा सकता, जैसे निराकार आत्मा है शरीर धारण किए बगैर कोई कार्य नहीं कर सकती, ऐसे ही निराकार शिव ज्योति बिंदु है, वो भी इस सृष्टि पर आता है तो साकार शरीर धारण करता है, जिस साकार शरीर को धारण करता है वो साकार शरीरधारी कोई साधारण मनुष्य आत्मा तो नहीं होगा। जितना ऊंचा आदमी होता है उतना ऊंचा उसका फर्नीचर भी होता है। तो भगवान इस सृष्टि में आकर गीता ज्ञान के अनुसार प्रवेश करता है किसी मनुष्य में, अति साधारण मनुष्य में प्रवेश करता है, जो मनुष्य आत्मा सृष्टि के आदि में नर से नारायण बनी थी, सारे विश्व का मालिक बनी थी, वो ही आत्मा द्वापर युग से द्वैतवादी धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स के चक्र में आने से नीचे गिरती गई, भले द्वापर और कलयुग द्वैतवादी द्वापर में जहां दो दो धर्म दो दो राज्य दो दो मतें दो दो कुल दो दो भाषाएं होती जाती, उन द्वैतवादियों से वो आत्मा जिसमें भगवान प्रवेश करते हैं जन्म जन्मांतर द्वापर से टक्कर लेती रहती है, परंतु ढेर के ढेर हिंदू जो देवताएं भी थे पहले लेकिन कम कलाओं के देवताएं थे, वो कम कलाओं के देवताएं भारत को धोखा दे करके दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते जाते हैं। क्यों कन्वर्ट होते जाते हैं? क्योंकि भगवान कलयुग के अंत में इस सृष्टि पर जब आते हैं तो पहले पहले माता का रूप धारण करते हैं। माता और पिता में ये खास फर्क होता है कि माता मृदुल स्वभाव की होती है, मीठे वचन सुनाने वाली होती है, पिता कठोर होता है। तो माता के रूप में जिसको शास्त्रों में नाम भी दिया गया है ब्रह्म मां, ब्रह्म माने बड़ी, मां माने मां, माने संसार की माताओं के बीच में जो मनुष्य आत्मा बड़े से बड़ी माता का पार्ट बजाती है। माता का विशेष गुण क्या होता है? है सहन शक्ति। ऐसी सहन शक्ति जो दुनिया में कोई मनुष्य मात्र नहीं धारण कर सका, ऐसी सहन शक्ति माताओं में उस मुखिया माता की होती है। आज भी देखा जाए दुनिया की जो भी माताएं हैं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा सहन कर रही हैं या कम सहन कर रही हैं? हैं? ज्यादा सहन कर रही हैं। कोई भी धर्म में क्यों न हो, कोई भी देश की क्यों न हो, माता का स्वभाव ही होता है सहन करना। तो ब्रह्मा से जो पैदा हुए ब्राह्मण, जैसे शिव के बच्चे शैव एक मात्रा बढ़ती है, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव एक मात्रा बढ़ती है, ऐसे ही ब्रह्मा के जो पुत्र कहे गए वो ब्राह्मण कहे गए, और वो ब्राह्मण बनने वाली आत्माएं कलयुग के अंत में सात धर्मों से चुनी हुई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं, हर धर्म की बीज रूप और आधार मूर्त आत्माएं भारत में आकर के जन्म लेती है। जब भगवान इस अंतिम जन्म में इस सृष्टि पर आता है तो देखो उस ब्रह्मा की गोद में पलने वाले वो ब्राह्मण ढेर के ढेर गोद का सुख लेने वाले ब्राह्मण बनते हैं। गोद को कुख कहा जाता है, कोख गोद। वो कुख को प्यार करने वाले ब्राह्मण कुख वंशावली कहे गए हैं शास्त्रों में। भगवान जिस ब्रह्मा के मुख में प्रवेश करते हैं उस मुख से सुनी हुई बातों को प्यार नहीं करते, सही को प्यार करते हैं, ब्रह्मा की देह को जरूर। जैसे कन्याएं माताएं सुंदर आकर्षक शरीर वाली होती हैं, ऐसे वो ब्रह्मा का चोला भी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा गोरा चिट्ठा होता है, जिसमें भगवान प्रवेश करके नाम देते हैं ब्रह्मा। परंतु देखो अगर ब्रह्मा का ही रूप भगवान का होता तो ब्रह्मा की मूर्तियों को पूजा जाता? ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं पूजी जाती, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते, ब्रह्मा को कोई याद भी नहीं करता। अरे देखो गांधी जी को याद करते हैं, इस दुनिया के ढेर मनुष्यों को याद करते हैं, कोई न कोई अच्छा काम करके गए हैं तब याद करते हैं, या कुछ बुरा करके गए हैं तो याद करते हैं? है? अच्छा करके गए। धर्म पिताओं को उनके फॉलोअर्स कितना याद करते हैं? जरूर अच्छा काम करके गए हैं। अच्छा, ब्रह्मा ने क्या बुरा किया? ब्रह्मा ने यही गड़बड़ कर दी। जो कृष्ण की आत्मा है सतयुग में, वो ही संगम में ब्रह्मा बनती है। उस ब्रह्मा में, जिसके लिए भगवान के महावाक्य हैं कि मैं जिसमें प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं, चाहे कोई भी नंबर का ब्रह्मा हो। ब्रह्मा को तो चार मुखी भी दिखाते हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा होंगे तो जरूर नंबर बार। तो जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है उसका नाम भी ब्रह्मा रखा, परंतु वो ब्रह्मा माँ के रूप में, भगवान के रूप में नहीं पूजा जाता। क्यों नहीं पूजा जाता? भगवान का कोई रूप ऐसा दुनिया में सुना जो पुरुष रूप धारण करने वाला हो, वो स्त्री रूप धारण करने वाला हो? सुना है? नहीं सुना। परंतु वो ब्रह्मा जिसके लिए गायन है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, वो ही ब्रह्मा वाली आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई ऐसी माता में प्रवेश करती है जो जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है, याद की जाती है, मंदिर भी बनते हैं, मूर्तियां भी बनती हैं। बाकी वो दाढ़ी मूछ वाला मानवीय रूप, मनुष्य रूप, वो नहीं पूजा जाता। तो देखो, ब्रह्मा अपूर्ण है ऐसे नहीं कहेंगे, सोलह कला संपूर्ण है। वो तो चंद्रमा है, जो चंद्रमा की यादगार भगवान बाप शिव शंकर भोलानाथ के मस्तक पर दिखाई जाती है, वो ही चंद्रमा। जब जगदम्बा तामसी रूप धारण करती है तो ब्रह्मा भी तामसी रूप धारण करके उस जगदम्बा के मस्तक में प्रवेश हुआ दिखाया जाता है। महाकाली के मस्तक में चंद्रमा दिखाते हैं। वो चंद्रमा ब्रह्मा की ही यादगार है, जो घड़ी घड़ी संशय में आता है। अनिश्चय रूपी मृत्यु को पाता है और घड़ी घड़ी बाप के सुनाए हुए ज्ञान में निश्चय बुद्धि बनता है। निश्चय माना जन्म और अनिश्चय माना मृत्यु। ऐसे घड़ी घड़ी जन्म मृत्यु के चक्र में आने वाली वो पहला पत्ता बच्चा बुद्धि है। जैसे बच्चा ज्ञान को नहीं समझता, ऐसे न समझने के कारण वो बच्चा बुद्धि कृष्ण के रूप में पूजा जाता है भारतवर्ष में। कृष्ण का बड़ा रूप पूजा जाता है? नहीं पूजा जाता। भले शिव बाप उस ब्रह्मा के रूप में प्रवेश करके माता के रूप में गीता ज्ञान तो सुनाते हैं, परंतु उस गीता ज्ञान को ज्ञानामृत नहीं कहते हैं, क्योंकि अमृत तो, मक्खन तो, सार तो मंथन करने के बाद निकलता है। ब्रह्मा की बच्चा बुद्धि उस मुख से जो निकला हुआ भगवान का ज्ञान है, और ब्रह्मा के फॉलोअर्स भी उस ब्रह्मा मुख से निकले हुए ज्ञान को महत्व न देने के कारण समझते नहीं है। सुनना अलग बात है और समझना अलग बात। इसलिए ब्रह्मा को बताया है कि वो पहले पहले ज्ञान सुनता तो है, और बच्चे बाद में सुनते हैं, पहले ब्रह्मा के कान सुनते हैं, और बच्चे नंबर बार सुनते हैं कम या ज्यादा, और ब्रह्मा सारा ज्ञान सुनता है, लेकिन सुनता है लेकिन है बच्चा बुद्धि होने के कारण समझता नहीं है, तो ज्ञान की कोई वैल्यू ही नहीं रही। ब्रह्मा की गोद में पलने वाले जो ज्ञान को महत्व नहीं देते हैं, भगवान के सुनाए हुए ज्ञान को महत्व न दे करके देह को महत्व दिया, ब्रह्मा की देह को महत्व दिया, वो बच्चे कमजोर आत्मा बनेंगे या पावरफुल आत्मा बनेंगे? कमजोर आत्मा बन जाते। जो पूरा महत्व देते हैं उस वाणी को, जो ब्रह्मा के मुख से भगवान बाप शिव सुनाते हैं, वो भगवान सूर्य, जो ज्ञान सूर्य कहा जाता है, उसके फॉलोअर्स पक्के पक्के सूर्यवंशी बनते हैं। और भगवान इस सृष्टि पर आकर के सूर्यवंश की ही स्थापना करता है। बाकी तो जितने भी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स हैं, वो कम कलाओं वाले हैं। 16 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे। कम कलाएं क्यों बनी? क्योंकि भगवान जब आते हैं तो पूरा ज्ञान धारण नहीं करते हैं, न समझने के कारण उतना तवज्जो नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं। क्यों महत्व नहीं देते हैं? क्योंकि वो ब्रह्मा की गोद में पलने वाली ढेर की ढेर आत्माएं दूसरे धर्मों से, दूसरे देशों से खींच करके अंतिम जन्म में भारत में आकर के ब्रह्मा से पैदा होने वाले ब्राह्मण बनते हैं। वो ब्राह्मण सब कम कलाओं वाले हैं, गिरती हुई कलाओं वाले हैं। चंद्रमा कलाओं से गिरता है, सूर्य कभी कलाओं से गिरता नहीं। इसलिए जो ज्ञान सूर्य के रूप में संसार में गाया हुआ है, उसके लिए शास्त्रों में विद्वानों ने लिखा हुआ भी है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। क्या कलाओं से अतीत है? जैसे सूर्य कलाओं में बांधा हुआ है या कलाओं से अतीत है? कलाओं से अतीत है, कल्याणकारी है। उसका नाम साबित करता है कि वो कल्याणकारी ही है। भगवान का असली नाम क्या है? जो नाम अर्थ में कल्याणकारी साबित होता है। अरे भूल गए, सत्यम शिवम सुंदरम, शिवम माने कल्याणकारी। वो जिस रूप में इस सृष्टि में आकर के पाठ बजाता है, वो रूप हर प्रकार से इस सृष्टि के लिए कल्याणकारी है। जिन इंद्रियों से पाठ बजाता है वो सभी इंद्रियां कल्याणकारी हैं। जो वाचा बोलता है वो सब प्रकार की वाचा कल्याणकारी ही साबित होती है, अकल्याणकारी साबित हो ही नहीं सकती। इसलिए आप देखेंगे कि शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो सारे ही नाम काम के आधार पर बने हुए हैं। दुर्योधन हो, युधिष्ठिर हो, दुशासन हो, धृतराष्ट्र हो, उन शब्दों के अर्थ जो हैं, उनके काम के आधार पर मुदे हुए हैं। तो असली नाम भगवान का क्या हुआ, और वो नाम उसकी आत्मा का नाम है। उसको अपना शरीर होता ही नहीं है। ज्योति बिंदु आत्मा का नाम शिव है, जिसका बड़ा रूप जिस बड़े रूप में प्रवेश करता है वो लिंग के रूप में गाया जाता है, पूजा जाता है। जैसे सोमनाथ मंदिर पुराने से पुराने मंदिर में जो लिंग था लाल पत्थर का, उसमें हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा किसकी यादगार है? है? हीरो पार्टधारी की यादगार है। वो हीरो पार्टधारी जब प्रवेश करता है जिस मनुष्य तन में, वो संसार के सामने हीरो पार्टधारी के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। तो वो सोमनाथ मंदिर में हीरा शिव की यादगार, और लिंग किसकी यादगार? उस लिंग रूप पत्थर की यादगार है, जो अंतिम जन्म में कोई बात ऐसी है जिसको लेकर के वो पत्थर बुद्धि साबित हो जाता है। क्योंकि दुनिया की हर चीज, दुनिया की हर आत्मा, दुनिया का हर मनुष्य मात्र, देवात्मा हो या राक्षस आत्मा हो, चार अवस्थाओं से जरूर गुजरती है। मकान हो, दुकान हो, मंदिर हो, पहले सत्व प्रधान, फिर सत्व सामान्य, फिर रजो प्रधान, फिर अंत में तमो प्रधान दुखदाई। जैसे बच्चा सत्व प्रधान, विकारों का नाम निशान नहीं, फिर सत्व सामान्य किशोरावस्था, फिर रजो प्रधान जवानी, फिर बुढ़ापा आता है तो तमो प्रधान किसी को अच्छा नहीं लगता, देखने में भी अच्छा नहीं, सुनने में भी अच्छा नहीं, शक्ति में भी अच्छा नहीं। ऐसी स्थिति हर चीज की होती है। तो वो भगवान जिसमें एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, वो भी चार अवस्थाओं से गुजरता है। सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता में सतो सामान्य, जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में स्वर्ण लिंग और रजत लिंग के रूप में पूजा जाता है, सोने का लिंग बनाते हैं, रजत अर्थात चांदी का लिंग बनाते हैं, और पूजा करते हैं। फिर द्वापर में कीमत बहुत कम हो जाती है, गुण कम हो जाते हैं। जैसे शास्त्रों में लिखा है द्वापर में 8 कलाएं रह जाती हैं, जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण थी, वो कम कलाएं रह जाने वाला वो लिंग भी ताम्र लिंग के रूप में पूजा जाता है, और कलयुग में लोहे के पत्थर के रूप में पूजा जाता है। क्योंकि कोई न कोई बात है, कोई न कोई अवगुण है जिसको लेकर के वो तमोगुणी बन जाता है। कारण कुछ भी हो, ड्रामा प्लान अनुसार, क्योंकि दुनिया का विनाश जो है वो तमोगुण से होता है या सत्वगुण से होता है? हैं? तमोगुण से होता है। सत्वगुण से स्थापना होती है, तमोगुण से विनाश होता है ड्रामा प्लेन अनुसार। और वो कार्य कोई भी धर्म पिता दुनिया में नहीं कर सका। जिसने सब धर्मों का विनाश किया हो, ये तो एक गीता का भगवान ही है। जिस मुकर्रर रथ में आता है, उस मुकर्रर रथ के द्वारा जिस रथ का नाम शंकर पड़ता है, जो नाम 33 करोड़ देवताओं के बीच में, 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में एक ही नामधारी है, जो नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, और दुनिया का कोई भी नाम नहीं जो शिव के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि भगवान का ये विरोध है कि मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं तो तुम बच्चों को नंबर बार आप समान बना करके जाता हूं। आप समान बनाने का मतलब ये है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना करके जाता हूं। ये स्टेज संगम युग में उस हीरो पार्टधारी की, अंतिम पुरुषार्थ की स्टेज में बनती है, और उस अंतिम पुरुषार्थ को जब धारण करता है तो जैसे गीता में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आत्मनिष्ठ मनुष्य सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लग सकता, क्योंकि आत्म की स्थिति में रहकर के जो पाप, जो पाठ बजाया जाता है, जो कर्म किए जाते हैं, उनका कोई पाप पुण्य बनता ही नहीं। लेकिन वो आत्मिक स्टेज 100% होनी चाहिए। जैसे निर्वात स्थान में जहां बिल्कुल हवा न चलती हो, वहां दीपक जला के रख दिया जाए तो हिलेगा डुलेगा? नहीं डुलेगा। ऐसे ही वो ज्योति बिंदु आत्मा लगातार ज्योति की स्थिति में जगी रहे, हिलने डुलने वाली न बने, लगातार ऐसी स्टेज बनी रहे, तो उसको कहेंगे निर्वात संपूर्ण आत्मा। ऐसी संपूर्ण आत्मा कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म करेगी, तो अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे, उसके ऊपर पाप पुण्य का कोई लेपक्षेप नहीं लगेगा। जैसे देवताएं, देवताएं आत्मनिष्ठ होते हैं, अपन को और दूसरों को ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखते हैं, तो देवताओं से न कोई पाप कर्म बनता है और न कोई पुण्य कर्म बनता है। ऐसे ही वो उन देवताओं में कैसा देवता गाया हुआ है, महादेव गाया हुआ है। देवताओं के बीच में एक ही वो महादेव है। किस आधार पर? इसी आधार पर महादेव है कि वो ऐसा कार्य करता है जो दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र की आत्मा नहीं कर सके, पार्ट नहीं बजा सके। बड़े बड़े धर्म पिताएं इस दुनिया में आए और दुनिया की बड़े से बड़ी जनरेशन को अपना फॉलोअर्स बना लिया। जैसे 500 करोड़ मनुष्यों के बीच में 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप क्राइस्ट हो गया। इतना बड़ा धर्म पिता, वो भी सृष्टि पर आकर के पुरानी परंपराओं का, पुराने धर्मों का विनाश नहीं कर सका, पुराने राज्यों का विनाश नहीं कर सका। वो कार्य भगवान जिस मनुष्य सच्ची के मनुष्य में प्रवेश करते हैं, जिसे सब धर्मों में मान्यता प्राप्त है, एडम, आदम, आदिनाथ, आदिदेव के रूप में मान्यता प्राप्त है। वो आदिदेव, वो इस सृष्टि का पिता, मनुष्यों का पिता, मनुष्य सृष्टि का पिता, इस सृष्टि का पहला मनुष्य जो भगवान के आने पर पहले नर से नारायण बनता है, बाकी नंबरवार नारायण बनते हैं। नंबरवार का मतलब यथा राजा तथा प्रजा नारायण जैसे बनते हैं। नारायण का मतलब ये है नार अयन, नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर, जिसका घर ही ज्ञान जल में है वो पृथ्वी का वासी होकर नहीं रहता। मन बुद्धि कहाँ रहती है? ज्ञान जल में रहती है।